सबसे पहला मंदिर जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में पहला बनाया गया था और अधिकतर समय वो पहला मंदिर होता है जिसका दर्शन करते हैं हम, वो है राधा मदन मोहन मंदिर। ये राधा मदन मोहन मंदिर शिला सनातन गोस्वामी के द्वारा स्थापित किए गए विग्रह हैं। हमारी परंपरा में हम जानते हैं कि तीन तत्व हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध का अर्थ है भगवान के साथ संबंध को जानना। अभिधेय वो क्रियाएं हैं भक्ति के जो इस संबंध को जागृत करते हैं, जैसे कि श्रवण और कीर्तन करना, ये अभिधेय है। और प्रयोजन है जो कि अल्टीमेट गोल, जो अंतिम लक्ष्य है, और जो कि है राधा और कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत करना। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीन तत्व हैं। तो पहले जो तत्व है संबंध, संबंध विग्रह जो है वो श्री राधा मदन मोहन है और उनके आचार्य हैं श्रील सनातन गोस्वामी। तो पहले तत्व के आचार्य श्री सनातन गोस्वामी। दूसरा जो अभिधेय तत्व है उसके आचार्य श्रील रूप गोस्वामी है, और अभिधेय जो विग्रह है वो है श्री राधा गोविंद देव। और तीसरे जो तत्व है प्रयोजन तत्व, उसके आचार्य श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी हैं और के विग्रह हैं श्री राधा गोपीनाथ। तो मदन मोहन, गोविंद देव और गोपीनाथ ये विग्रह हैं, और सनातन गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी ये आचार्य हैं। तो थोड़ा सबसे पहले हम जब निकलेंगे तो सनातन गोस्वामी की समाधि के दर्शन करेंगे। सनातन गोस्वामी के बारे में संक्षिप्त में बोलना चाहूंगा। ये मूलतः कर्नाटक से हैं, सरस्वत ब्राह्मण परिवार से, परंतु उनके पूर्वज किसी कारण से कर्नाटक से निकलकर जैसोर में, बांग्लादेश में एक स्थान है जैसोर, जहां पर वो निवास करने लगे और वहीं पर श्री सनातन गोस्वामी का और श्री रूप गोस्वामी का जन्म हुआ। ये दोनों भाई थे, रूप और सनातन गोस्वामी। उस समय के राजा नवाब हुसैन शाह के निवेदन पर और उसके उनके फोर्स करने पर, जबरदस्ती उन्होंने सनातन गोस्वामी को मंत्री पद स्वीकार करने के लिए मंजूर करवाया, क्योंकि सनातन गोस्वामी इतने योग्य थे, इतने बुद्धिमान थे, इतने सुंदर थे और इतने लोकप्रिय थे कि सनातन की नवाब हुसैन शाह जानता था कि अगर मैं सनातन गोस्वामी को अपना मंत्री बना दूंगा तो मेरे लिए राज्य का कारोबार संभालना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ वर्षों के लिए सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी नवाब हुसैन शाह के मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। ये स्थान आप लोगों ने देखा है, रामकेली मायापुर यात्रा में कुछ जो कुछ भक्त रहे होंगे आपने देखा है? नहीं? अगली बार जब हम मायापुर यात्रा ले जाएंगे तो वहां पर भी जाएंगे। रामकेली बहुत सुंदर, राधानाथ स्वामी महाराज हमको 1997 में लेकर गए थे। अभी भी वो महल के कुछ अवशेष हैं और वो स्थान है जहां पर रूप और सनातन निवास करते थे। उनके लिए मुसलमानों की सेवा करना बहुत तपस्या थी, इसलिए वो जहां रह रहे थे उनको हालांकि अच्छे अच्छे महल दिए गए थे, उन्होंने पीछे राधा कुंड, श्याम कुंड बनाया हुआ था और मदन मोहन डीटीज की पूजा करते थे। तो कुछ समय बाद जब रूप और सनातन को पता चला कि श्री चैतन्य महाप्रभु अब यहां पर आ रहे हैं रामकेली में, तो चैतन्य महाप्रभु से मिले। आपने उस दिन बरसाना में जो मैंने चैतन्य चरितामृत से पढ़ के सुनाया वो भाग सुना होगा, जहां पर रूप और सनातन चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर के उनका आश्रय ग्रहण करते हैं, और सही समय आने पर वे सब कुछ त्याग करके श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लग जाते हैं। त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत श्री श्रीनिवास आचार्य। ये षड गोस्वामी अष्टक में बताते हैं कि कैसे महान है हमारे गोस्वामी। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अशेष मंडलपति, प्रधानमंत्री का पद। आजकल तो लोग कितना झगड़ते हैं प्रधानमंत्री छोड़ो, एक छोटे से एमएलए एमपी बनने के लिए लोग सर्वस्व अर्पण कर देते हैं, और एक बार अगर कोई प्रधानमंत्री बन जाए तो कोई त्यागना नहीं चाहता। कोई ऐसा है इतिहास जैसे खुशी से त्याग दिया हो? बहुत कम है, या तो गोली लग जाती है, इलेक्शन में हार जाते हैं। लेकिन सनातन गोस्वामी ने बड़े खुशी से त्याग दिया, और वो भी कैसे, तुच्छ व्रत, ऐसे नहीं कि बहुत दुख के साथ। कि जिस व्यक्ति को कृष्ण भक्ति के महानता का पता चला है, जैसे महाराज भरत मलवत, उन्होंने राज्य को त्याग दिया जैसे कि मल के समान, विष्ठा के समान, ऐसे सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी ने सब कुछ त्याग दिया और फिर वो यहाँ आकर वृंदावन में रहने लगे। हम सनातन गोस्वामी की भजन कुटी देखेंगे आज। वो एक सरल कौपीन कंठाश्रित, तो कौपीन धारण करते, भिक्षा मांग के रहते, घर घर जाके मधुकरी करते, और कभी कभी कुछ चने मिल जाते वो स्वीकार करते, कभी सूखी रोटी मिल जाती बिना नमक के, और उसी से खुशी से खाते, और रोज वो अलग अलग पेड़ों के नीचे सोते। इसे एक पेड़ के प्रति भी आसक्ति नहीं हो, अलग अलग पेड़ों के नीचे सोते और हमेशा गोपी भाव में मग्न रहते थे। एक बार शिला गिरिराज स्वामी महाराज एक घटना बता रहे थे अपने जीवन की, कि एक बार मायापुर में रह रहे थे, और मायापुर में उस समय जो भक्तों के लिए रहने की सुविधाएं बहुत सीमित थी, और सारे ब्रह्मचारी जो एक हॉल में सोते थे। तो शिला गिरिराज महाराज बता रहे थे कि वो रोज पंखे के नीचे हॉल में सोते थे, एक विशेष पंखे के नीचे। और एक दिन उनके गुरु भाई ने उनको बताया कि आप एक ही पंखे के नीचे सो रहे हो, इसी से भी आसक्ति हो जाएगी। तो उस दिन से वो रोज अलग अलग पंखों के नीचे सोने लगे। तो भक्त तो किसी भी चीज से आसक्त नहीं होना चाहिए, एक ही आसक्ति होनी चाहिए, वो है कृष्ण नाम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जो कि छठ गोस्वामी के अनुयायी हैं, वो यहाँ पर राधा दामोदर मंदिर में रहते थे। आप में से कितने लोगों ने प्रभुपाद जी के कमरे देखे हैं, राधा दामोदर मंदिर के? अच्छा, काफी लोगों ने नहीं देखे हैं। तो आज शाम को हम श्रील प्रभुपाद के उन कमरों को देखेंगे, अमेरिका जाने से पहले जहां पर वो रहते थे, और उन्होंने श्रीमद भागवत का प्रथम स्कंद वहीं पर अनुवाद किया। तो श्रील प्रभुपाद कई वर्ष यहां पर रहे, और बाद में गुरुदेव की आज्ञा से अमेरिका गए, और अमेरिका में उनके शिष्यों ने उनके लिए बहुत सारे सुंदर निवास स्थान बनाए। लेकिन एक दिन श्री प्रभुपाद कह रहे थे कि यहाँ पर मेरे शिष्यों ने बहुत सुंदर कमरे बनाए हैं, लेकिन मेरा मन जो है राधा दामोदर मंदिर के जो सरल कमरे थे वो उसका मनन कर रहा है, वो ज्यादा प्रभुपाद जी को ज्यादा पसंद थे। लेकिन फिर भी वो बोले कि मेरे लिए वहां जाना वो इंद्र तृप्ति होगा, क्योंकि कृष्ण अगर चाहे कि महल में रहना है, और अगर आप पेड़ में रहना चाहे तो इंद्र तृप्ति है, और कृष्ण बोले कि आपको पेड़ के नीचे रहना है और आप महल चाहें तो वो भी इंद्र तृप्ति है। भक्त के लिए एक ही इच्छा होनी चाहिए, और वो है कृष्ण की क्या इच्छा है। कृष्ण अगर महल में रखें या पेड़ में रखें या जंगल में रखें, नारायण अपरा सर्वे न कुतश न बिव्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेश अपि तुल्यार्थ दर्शन। तो शरद गोस्वामी ऐसे अलग अलग पेड़ में रहते थे, और सनातन गोस्वामी को ये सनातन गोस्वामी के जीवन का वर्णन मैं डिटेल में बाद में करूंगा, पहले मैं सारे विग्रह का कवर करना चाहता हूँ, जितने भी विग्रह हैं। तो ये जो विग्रह जो मदन मोहन जिसकी सेवा श्री सनातन गोस्वामी करते थे वृंदावन में, वो उनको कैसे प्राप्त हुए, इसकी बहुत अच्छी एक कथा बताई गई यहाँ पर। इससे पहले अद्वैत आचार्य वृंदावन में रहते थे, और उन्होंने, हम देखेंगे ये मदन मोहन मंदिर के पास में एक वृक्ष है जिसके पास में उनको मदन मोहन के विग्रह प्राप्त हुए थे जमीन से, उसको मदन गोपाल भी कहा जाता था उस समय। वास्तव में ये जो विग्रह है मदन गोपाल या मदन मोहन, इसकी स्थापना स्वयं वज्रनाभ ने की थी। कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के पुत्र थे वज्रनाभ। महाराज परीक्षित ने उनको मथुरा मंडल का राजा के रूप में घोषित किया था, और स्वयं विश्वकर्मा ने अनेक मूर्तियां भगवान कृष्ण के बनवाए, और कुछ मूर्ति स्वयंभू मूर्ति थी, अपने आप प्रकट हुए थे। तो उसमें तीन प्रमुख मूर्ति हैं जो कि वृंदावन में मानी जाती हैं। एक है राधा मदन मोहन, दूसरा गोविंद देव, और तीसरा गोपीनाथ, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। समय बीतते बीतते ये मूर्तियां अदृश्य हो गए, और अद्वैत आचार्य एक बार जब उस स्थान से भ्रमण कर रहे थे तो उनको ये सुंदर विग्रह, हरे कृष्ण, बैटरी डाउन हो गई, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे कृष्णा
राम राम हरे हरे। हरि बोल। बैटरी वाला डाउन। मैं आपको विग्रह के बारे में बता रहा था कि ये जो विग्रह हैं जो कि वज्रनाभ द्वारा स्थापित थे कुछ समय के लिए अदृश्य हो गए। बाद में अद्वैत आचार्य उनको ये विग्रह एक पेड़ के पास प्राप्त हुए और कुछ समय तक उन्होंने सेवा की मदन गोपाल की। बाद में उनको पता चला कि अब भगवान की इच्छा मैं शांतिपूर्व वापस जाऊं और श्री गौरंग महाप्रभु के प्रकट होने के लिए प्रार्थना करूं, तो अद्वैत आचार्य वृंदावन छोड़कर चले गए और जाते समय उन्होंने विग्रह को एक ब्राह्मण को सौंप दिया। उस ब्राह्मण का नाम था पुरुषोत्तम चौबे। जब सनातन गोस्वामी वृंदावन में आए और वो घर घर मधुकरी कर रहे थे, एक दिन वो पुरुषोत्तम चौबे के घर पे आए और उन्होंने देखा ये बहुत सुंदर बालक उनको दिखाई पड़ रहा है जो खेल रहा है सबके साथ। और बाद में उन्होंने देखा कि वही बालक अंदर गए और वो मदन गोपाल विग्रह के रूप में है वहां पर। और पुरुषोत्तम चौबे ये कई बार उस बालक को डांटते क्योंकि उनका रस बहुत वात्सल्य रस जैसे था, भगवान के साथ वात्सल्य यानी उनको उनको डांटते थे प्रेम से। सनातन गोस्वामी ने देखा तो समझाने लगे कि आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए, भगवान के विग्रह है। लेकिन बाद में जब वो चले गए तब भगवान कृष्ण स्वयं सनातन गोस्वामी के सपनों में आए और बोले कि अब आप ही मेरी सेवा को स्वीकार करिए। और पुरुषोत्तम चौबे से भी बोले कि आप मुझे सनातन गोस्वामी को सौंप दो। अगले दिन जब सनातन गोस्वामी मधुकरी करने आए तब पुरुषोत्तम चौबे ने विग्रह को सनातन गोस्वामी को सौंप दिया। और सनातन गोस्वामी मन में सोच रहे थे, भगवान से कह रहे थे मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भगवान को अर्पण करने के लिए भोजन भी नहीं है, कुछ पैसे भी नहीं है। तो भगवान मदन मोहन कहने लगे कि आप जो भी देंगे मैं स्वीकार करूंगा। तो यहां पर एक स्थान है जहां अभी मदन मोहन मंदिर है, सनातन गोस्वामी भगवान की सेवा करते, उसमें मंदिर भी नहीं था, पेड़ के नीचे भगवान की सेवा करते और जो भी उनको मिलता है भगवान को अर्पण करते। कुछ रोटी, कई बार रोटी के साथ नमक भी नहीं होता, हम तो कई बार सब्जी में अगर थोड़ा नमक कम हो जाए तो समस्या हो जाती है, लेकिन वो बिना नमक के बिना दाल के बस ऐसे रोटी अर्पण करते। कुछ डिवोटीज बताते हैं कि बाटी अर्पण करते, आप देखोगे सनातन गोस्वामी के समाधि के पास बाटी अर्पण किया था। बाटी यानी आटा तो पानी से मिक्स करके उसको अग्नि के पास रख के उसको पकाया जाए और एक्चुअली बहुत टेस्टी होता है वो, कभी आप जाओगे छोटे छोटे ग्रुप में जाओगे तो आपको मिल सकता है वहां। तो सनातन गोस्वामी वो अर्पण करते, एक दिन भगवान मदन मोहन बोले, सनातन आप मुझे रोटी दे रहे हो ये रोज, कोई सब्जी नहीं कुछ लड्डू नहीं, कम से कम थोड़ा नमक तो साथ में दे दो। सनातन बोले, भगवान अभी आप नमक मांग रहे हो, फिर आप शक्कर, फिर आप लड्डू मांगोगे, मैं यहाँ भजन के लिए हूँ, पुस्तक लिखने के लिए हूँ, जो भी है मैं दे रहा हूँ, बस स्वीकार करो भगवान। ठीक है ठीक है। तो एक बार यहाँ से एक यहाँ आप जहाँ बैठे हो वहां यमुना नदी बहुत पास में ही थी, ये सब यमुना के किनारे ही था मदन मोहन मंदिर जो है। और एक नौका दिल्ली से आगरा की ओर यमुना के रास्ते से जा रही थी और उसमें बहुत सारा नमक था, और अचानक वो नौका जो है पानी में किसी तरह से फंस गई। उस नौका का जो मालिक था उसका नाम था कपूर, उसको किसी ने बताया कि अब जाओ जाओ यहां पर एक टीला है, एक पर्वत द्वादश आदित्य टीला, वहां पर एक संत रहते हैं जिनका नाम है सनातन, आप उनसे मिलो, अगर वो आशीर्वाद देंगे वो कृपा करेंगे तो आपकी नैया जो है वो मुक्त हो जाएगी। तो कपूर जी वहां पर आए और सनातन गोस्वामी को देखा, सनातन गोस्वामी सेवा में लग रहे थे। सनातन गोस्वामी बोले उनसे कि अगर आपकी सब इच्छा को अगर पूरी करना है तो आप मदन मोहन की सेवा करो, उनसे ही प्रार्थना करो, वही आपकी नैया को बचा सकते हैं। तब उसने देखा कि मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, इस समय मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास नमक है, तो कुछ नमक लेकर आए और उन्हें भगवान को अर्पण किया, और कुछ समय बाद वो नौका मुक्त हो गई। वो आगरा गए जहां पर उन्होंने अपना माल सब बेच दिया और जो भी पैसे मिले वो वृंदावन में लेकर सनातन गोस्वामी को सौंप दिए। सनातन गोस्वामी बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अलग अलग पेड़ों में रहता हूं, वास्तव में पेड़ के नीचे रहना कितना सुंदर है, नहीं ये तो हमको ऐसी वेस्टर्न कल्चर के कारण आदत पड़ गई है कि फ्लैट्स में मैच बॉक्सेस में रहने की, लेकिन वास्तव में देखो अगर कोई कहे कि आपको चॉइस है कि फोगला आश्रम में कमरे में रहो या यहां रहो तो क्या ज्यादा अच्छा है, ये अच्छा है, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है इसका मतलब आप गोस्वामी हैं। ये सरल सरल जीवन, सिंपल लिविंग, और कोई किराया भी नहीं भरना और कोई रूम बुकिंग भी नहीं करना, जो पेड़ खाली मिल जाए उसके नीचे सो जाना है, कोई लॉक लगाने की भी जरूरत नहीं। तो सनातन गोस्वामी वो बोले मुझे पैसे क्या जरूरत है, मैं तो पेड़ों के नीचे रहता हूं, मधुकरी करता हूं, जो मिल जाए उसमें संतुष्टि, अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो आप भगवान मदन मोहन के लिए मंदिर निर्माण करो। तो उस अमीर व्यापारी मिस्टर कपूर ने बहुत सुंदर मंदिर निर्माण किया जो कि आप सब शाम के समय दर्शन करोगे। ये जो मंदिर है इसको वृंदावन का प्रतीक माना जाता है, सबसे पहले इसी के दर्शन किए जाते हैं, न केवल मंदिर, कीर्तन हॉल, प्रसादम हॉल सब उन्होंने निर्माण कराया। तो ये एक चीज दिखाती है सनातन गोस्वामी के बारे में कि महान भक्त अपने स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहते लेकिन भगवान के लिए सबसे अच्छी चीज, सबसे अच्छी चीज, भगवान के लिए सबसे सुंदर चीज, सबसे बेस्ट, भोजन भी बेस्ट भगवान के लिए, मंदिर भी बेस्ट, हर एक चीज सर्वोत्तम, ये भक्त की चेतना होनी चाहिए। अब महाराज बताते हैं कि मदन मोहन से क्या प्रार्थना करनी चाहिए, हर एक मंदिर में भगवान कुछ राधानाथ स्वामी महाराज कुछ बताते हैं। वे बताते हैं कि हम सब कामदेव से आकर्षित हैं और हमें भगवान मदन मोहन से प्रार्थना करनी है कि हे मदन मोहन देव, आप हमारे हृदय को आकर्षित करो, काइंडली अट्रैक्ट अवर हार्ट्स, अट्रैक्ट अवर माइंड एंड सेंसेस अवे फ्रॉम मटीरियल ऑब्जेक्ट्स विच आर द सोर्सेज ऑफ मिजरी, and attract my mind only to hearing and chanting your glories and serving your lotus feet and the lotus feet of your devotees. हमें प्रार्थना करनी है, इसका अनुवाद है कि मदन मोहन आप ऐसा कुछ करो कि इससे मेरा मन आपके चरणों में आसक्त हो जाए। मेरे मन और इंद्रिय अभी भौतिक विषयों से आकर्षित होते हैं और ये विषय जो है ये दुख के कारण है, यही संस्पर्श जा भोग दुख यो न एवत, ये दुख के कारण है, हमें मालूम है कि दुख के कारण है लेकिन फिर भी हम आकर्षित होते हैं। हमें क्या प्रार्थना करनी है कि मेरा मन इन इंद्रियों के प्रति आकर्षित होने के बजाय श्रवण और कीर्तन के प्रति आकर्षित हो, जैसे मैं आपकी कथाओं को सुनता रहूं जागते हुए, सब लोग जाग रहे हैं ना, क्योंकि इतना ठंडा इतना अच्छा मौसम है कि पता ही नहीं चले कौन सो जाएगा। सब लोग जोर से बोलिए राधे राधे, बीच बीच में बोलते रहिए जिससे कि तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा मन श्रवण और कीर्तन में आसक्त रहे, आपके चरण कमल की सेवा में लगा रहे और आपके भक्तों के चरणों की सेवा में लगा रहे। भक्ति विनोद ठाकुर एक सुंदर भजन में ऐसा ही बताते हैं, प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन नाही मागे देह सुख विद्या धन जन। इस सुंदर भजन में भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, हे प्रभु तब पद युगे आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है, नाही मागे देह सुख, मैं देह सुख नहीं चाहता, मैं विद्या नहीं चाहता, मैं धन नहीं चाहता, सुंदर स्त्री या पुरुष नहीं चाहता, नाही मागे स्वर्ग आर मोक्ष नाही मागे, मैं स्वर्ग भी नहीं चाहता मुक्ति भी नहीं चाहता, ना करी प्रार्थना को न विभूति र लागी, मैं विभूति भी नहीं चाहता। जैसे लोग राख से सोना बनाते हैं या सोना से राख बनाते हैं, पता नहीं क्या होता है वो जादू नहीं चाहता मैं क्या चाहता हूँ, निज निज कर्म निज निज गुण कर्मे जे जे धर्म पाए, जो जो भी मुझे जन्म मिले, चाहे कीट का मिले या पतंग का मिले या देवता का मिले या बंदर का मिले या मानव का मिले, मेरे को क्या अवसर मिले, जन्मे जन्मे तब नाम गुण गाए, मैं हमेशा आपकी कथा सुनता रहूं, आपका गुण गाता रहूं और भक्तों के संगति में कृष्ण का नाम पुकारता रहूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो महाजन ये न गत स पंथ, जो भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं हम वही प्रार्थना को रिपीट करते हैं, हम उसको दोहराते हैं, हम इस तरह से कृष्ण को बहुत प्रिय बन जाते हैं जब हम वही वही भजन वही गीत गाते हैं जो बड़े आचार्यों ने गाया है। संसारी दुनिया में कुछ लोग गाते हैं ऐसे, राधे राधे कृष्ण मिला दे वगैरह, तो इतना चीप चीज नहीं है, इतनी सस्ती चीज नहीं है, हमें वही भजन गाने का प्रयास करना चाहिए जो हमारे पूर्वज आचार्यों ने गाया है, क्योंकि हमारे पूर्वज आचार्य शुद्ध भक्त हैं और वो जानते हैं कि कृष्ण से क्या मांगना चाहिए। एक बार यही वृंदावन में एक व्यक्ति जादूगर आया था, श्री प्रभुपाद के समय भी एक जादूगर, और भक्तों को जादू दिखा रहा था, और आप जानते हैं भक्त कितने आकर्षित हो जाते हैं, भागवतम क्लास से भी ज्यादा सब लोग उस तरफ आकर्षित हुए, और फिर प्रभुपाद जी के पास भी वो आए, और प्रभुपाद यही वृंदावन में थे, और प्रभुपाद जी पहले मुस्कुराते रहे, उसको लगा शायद मैंने प्रभुपाद को भी अच्छा इम्प्रेस कर दिया, फिर प्रभुपाद मुस्कुरा कर बोले, क्योंकि कोई चीजों को लेता और अदृश्य करता, जैसे कोई चीज को लेता और अप्रकट हो जाती, फिर वो कान से निकालता, सब लोग स्तब्ध हो जाते। तो प्रभुपाद जी ने फिर गंभीर होकर कहा, यू कैन मेक सो मेनी थिंग्स अपियर एंड डिसअपियर, कैन यू मेक बर्थ एंड डेथ डिसअपियर, क्या बहुत सारी चीजों को अप्रकट कर रहे हो, आप जन्म मृत्यु को अप्रकट दूर कर सकते हो क्या? तो वो जादूगर ईमानदार था, बोला नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं जन्म मृत्यु को नहीं दूर कर सकता। प्रभुपाद जी बोले मेरे पास वो उपाय है जिसे जन्म मृत्यु दूर हो सकता है, इसलिए मैं आपसे बड़ा जादूगर हूं। और अमेरिका में कई बार जब कोई बोलता स्वामी जी कुछ जादू दिखाइए, तो प्रभुपाद जी बोलते ये देखो, ये मेरे अनुयायियों को देखो, ये पहले मांस खाते थे शराब पीते थे और अब ये सारी बुरी आदतों को छोड़कर कृष्ण का नाम ले रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रियल मिरेकल है हृदय का परिवर्तन, इसीलिए श्रील प्रभुपाद हम सबके लिए पूजनीय और आराधनीय है कि उन्होंने निम्नतम निम्न व्यक्ति को सबसे ऊंचे कृष्ण भक्ति का अवसर दिया है, यही एक साधु का लक्षण है। अब दूसरे विग्रह जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे अभिधेय विग्रह है जिनका नाम है राधा गोविंद, हम प्रयास करेंगे सब सात आज ही पूरा करें, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो जब भी आपको फ्री समय मिले, कल तो सेवा, कल और परसों सेवा है, लेकिन परसों शाम को आप फ्री होंगे 5 तारीख को शाम को, तो उस समय जब फ्री समय मिले तो आप बचे हुए विग्रह कर लेना। आप इन 7 मंदिरों के नाम आप जानते ही होंगे या लिख लीजिए, और बाद में फिर जब जैसे समय मिले। जो दूसरे विग्रह जो महत्वपूर्ण है वो राधा गोविंद जी, वो अभिधेय मूर्ति हैं। गोविंद देव की कृपा से हम अभिधेय यानी भक्ति के श्रवण और कीर्तन में लग सकते हैं, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज ऑफ डिवोशनल सर्विस, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो क्रियाएं हैं, और इसके आचार्य हैं श्रील रूप गोस्वामी, और इस तरीके से हम अभिधेय तत्व का पालन करके हम अनर्थों से मुक्त हो सकते हैं। हमने जान भी लिया कि कृष्ण भगवान है, मैं उनका दास हूं, मैं उनके संबंधित हूं, लेकिन अभी तक अशुद्धता के कारण अपवित्रता के कारण हम प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर पाते। अभिधेय वो चीज है जिसके द्वारा हमारे हृदय को शुद्ध बनाया जा सकता है। और तीसरे विग्रह जो है वो है राधा गोपीनाथ। इनकी कथा डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इनका महत्व है ये प्रयोजन विग्रह हैं और उनके आचार्य शील रघुनाथ दास गोस्वामी हैं। मदन मोहन के बारे में एक चीज और मैं बताना भूल गया कि एक हमारे जो मंगलाचरण में ये एक श्लोक आता है जो कि मदन मोहन जी के लिए है। जयतम सुरतोर पंगोर मम मंदा मतेर्गति मत सर्वस्व पदाम भोजो राधा मदन मोहन। कि मैं पंगु हूं, मैं लेम हूं, मैं लंगड़ा हूं और मैं ज्यादा बुद्धिमान नहीं हूं, लेकिन मेरे सर्वस्व है राधा मदन मोहन। राधा मदन मोहन के चरण कमल ही मेरे सब कुछ है और उनकी कृपा से मैं भक्ति में आगे बढ़ सकता हूं। एक और चीज है सनातन गोस्वामी के बारे में बताया गया, शायद हम उनके समाधि में जाएंगे, कि सनातन गोस्वामी पहले तो ब्रज में आने से पहले नवाब हुसैन शाह के मंत्री थे, और जब मंत्री थे तो वो इतने बुद्धिमान थे कि न केवल वो भक्ति का अभ्यास कर रहे थे, व्यवहारिक कार्य जैसे मैनेजमेंट डिप्लोमेसी सब जानते थे, कैसे मैनेजमेंट को क्या व्यवस्था कैसे व्यवस्था करनी है राज्य की और कैसे चतुरता दिखानी है। आपको मालूम है जब नवाब हुसैन शाह उनको जेल में डाल दिया था, पहली बात तो सनातन गोस्वामी को जब कथा पढ़नी थी भागवत सुनना था और नवाब हुसैन शाह के मंत्री पद से छुट्टी नहीं मिल रही थी तो सनातन गोस्वामी ने बहाना किया और वो क्या था, बीमार हो गए। मैंने बताया था इसके बारे में उस दिन, है ना, बीमार हो गए थे। और बाद में जब उनको गुस्से में आकर राजा ने जेल में डाल दिया तब उन्होंने जेल के सुप्रिंटेंडेंट को बोला कि आप मुझे मुक्त कर दो, आप मुझे मुक्त करोगे तो भगवान आपको मदद करेंगे, पहले मैंने आपको मदद की थी जब मैं मंत्री था, अब आप मुझे मदद करो। इस तरह चालाकी से बातचीत की। भक्त को कई बार चालाकी का भी उपयोग करना पड़ता है भगवान की सेवा में, लेकिन कई बार लोग चालाकी से क्लास मिस कर देते हैं, वो बात अलग है। हर एक चीज को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से उपयोग किया जा सकता है। और जब वो जेल कीपर उनको नहीं छोड़ रहा था तब सनातन गोस्वामी ने 5000 सोने के सिक्के दिए, उसको बोला कि आप मुझे मुक्त करो, मैं यहां से निकलूंगा तो कहां जाऊंगा, वृंदावन नहीं मक्का जाऊंगा। क्योंकि बोलेंगे वृंदावन जाऊंगा चैतन्य महाप्रभु मिलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, मक्का या मदीना जो मुसलमानों का तीर्थ होता है वो स्थान जाऊंगा। इस तरह चतुराई का उपयोग किया और साथ साथ 2000 और सोने के सिक्के, और साथ साथ उसे कहने लगे कि आप तो बहुत दयालु हो, आप तो बहुत अच्छे हो। रघुनाथ दास गोस्वामी भी, उनको एक बार एक कोई जमींदार तकलीफ देने आया तो रघुनाथ गोस्वामी बोले, ओ आप तो जिंदा पीर हो, सारे शास्त्रों को जानने वाले हो, शायद उसने कोई शास्त्र पढ़े ही नहीं होंगे। लेकिन वो इतने खुश हो गए कि उन्होंने रघुनाथ को छोड़ दिया, कुछ नहीं कहा। प्रबोधानंद सरस्वती बोलते हैं कि दांतों में तिनका रखकर मीठे मीठे शब्द बोलो कि हे साधव आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत गुणवान है, तो कहेगा ठीक है ठीक है, क्या चाहिए आपको, आप सब कुछ भूल जाओ और चैतन्य महाप्रभु की शरण में आ जाओ। तो ये सनातन गोस्वामी का भी एक गुण था। और एक और चीज प्रभुपाद जी बताते हैं, उसको सब भाषाएं भी बताते हैं, संस्कृत बंगाली अरबी जो मुसलमानों के राज्य में जरूरत थी। और जब ब्रज में आ गए, ब्रज में विशेष करके ब्रजवासियों को बहुत प्रिय हो गए। आप सोच सकते हैं सनातन गोस्वामी कितने प्रिय थे ब्रजवासियों को, कि जिस दिन सनातन गोस्वामी अपना देह त्याग किया, जब उन्होंने समाधि ग्रहण की, उस दिन पूर्णिमा का दिन था, सारे ब्रजवासियों ने निश्चित किया कि सनातन गोस्वामी हमारे गुरु हैं, इसलिए ये दिन हमारे लिए गुरु पूर्णिमा के रूप में माना जाएगा। और उस दिन सब ब्रजवासी गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। इस बार मेरा सौभाग्य था, जुलाई 21 को मैं यहां पर आया था विशेष करके उस दिन परिक्रमा करने के लिए। और हम इस्कॉन का एक आश्रम है, भक्ति वेदांत आश्रम गोवर्धन के पास, वहां पर हम जल सेवा कर रहे थे, जो भी नागरिक जो भी परिक्रमा करने वाले भक्त उनको पानी पिला रहे थे। तो हमने अंदाजा लगाया, क्योंकि हर 15 मिनट में हम गिन रहे थे कितने लोग उधर से गेट से बाहर जा रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं या नहीं पी रहे, ऐसे गिन रहे थे। तो हमारा अंदाजा था करीब 2 दिन में 80 लाख लोगों ने परिक्रमा की। कॉन्स्टेंट, ऐसे एक समय नहीं, सुबह से शाम तक। और टेरेस से देखो हृदय कोई नदी चल रही है, जैसे व्यक्तियों की नदी, और सारे सारे बसेस जो आगरा से मथुरा से सब गोवर्धन के लिए स्पेशल बसेस आते हैं और वो भी एक किलोमीटर पहले ही छोड़ देते हैं। अब ब्रजवासी स्पेशली रात के समय, नहीं मैं इस बात बात इसलिए बता रहा हूँ कि कितना सनातन गोस्वामी के प्रति आदर ब्रजवासियों का रहा है। बहुत सरल थे और जब वो ब्रज में भ्रमण करते इतना ख्याल रखते और कभी एक एक रात एक गांव में रुकते और जब आगे जाने लगते सब बोलते कि आप एक एक रात और रुक जाइए और वो स्वीकार कर लेते, वो रुक जाते और हर एक व्यक्ति को लगता कि हमारे स्वयं के हैं। और जब वो गांव को छोड़ने जाते तो गांव के सब लोगों के आंखों में आंसू आ जाते कि हमको छोड़कर जा रहे हैं। और कई बार उनसे मिलने के लिए पति पत्नी आते और जानते हैं पति पत्नियों में झगड़ा होता ही है, ये तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये तो कॉमन चीज है, लेकिन फिर भी साथ में रहना होता है। तो पति बोलते हैं कि देखो इन्होंने ऐसा ऐसा किया ये ठीक नहीं है, पत्नी बोलते हैं कि ये ठीक नहीं है, दोनों अपनी जैसे सनातन गोस्वामी के पास अपनी निवेदन करते और सनातन गोस्वामी निश्चय जो देते वो दोनों स्वीकार करते क्योंकि वो दोनों को बहुत प्रिय थे। मतलब इवन फैमिली प्रॉब्लम्स को भी वो बड़े आसानी से हल कर लेते थे। और कभी कभी पूछते, ही वुड आस्क वन ऑफ द मेन, हैव यू गॉट योर डॉटर मैरिड, आपकी पुत्री का विवाह हो गया, कब करा रहे हो, क्या क्या आपका स्वास्थ्य कैसा है, पिछली बार आया था यहाँ पर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, अभी ठीक है। जैसे हर एक भक्त के लिए कंसर्न, श्रीला प्रभुपाद भी हर एक के लिए कंसर्न दिखाते थे। फिर किसी से पूछते आपकी खेती कैसे हो रही है, अनाज कैसे उग रहा है, तो सनातन गोस्वामी न केवल राधा और कृष्ण के ऊंचे तत्वों को जानते थे बल्कि ऐसी चीजें भी जानते थे जो कि साधारण व्यक्ति के लिए आवश्यक है। He was the greatest well-wisher for all living beings. बस समय कम है हमको, एक बजे तक सारे कथा करने, इसलिए एक और कथा बता के हम लोग 5 मिनट के लिए भजन रहे। कैसे गोविंद देव कैसे प्रकट हुए इसके बारे में है। जैसे मैंने पहले बताया वज्रनाभ ने मदन मोहन, गोविंद देव, गोपीनाथ, हरिदेव, केशव देव और दाऊजी, बलदेव, ये सब विग्रह के जो स्थापना की थी अलग अलग स्थानों में। काल उपरांत जब वज्रनाभ चले गए तो ये विग्रह लुप्त हो गए, उनमें से अनेक विग्रह पता नहीं था कहां पर है। और एक दिन रूप गोस्वामी मन में सोच रहे थे कि मैंने सुना है गोविंद देव के बारे में, ये भगवान के विग्रह हैं गोविंद देव, लेकिन वो कहां पर हैं मुझे पता नहीं चल रहा, वो पूरे ब्रज में मैंने ढूंढ लिया लेकिन गोविंद देव नहीं पता चल, गोविंद देव का कोई जानकारी नहीं मिली। और ब्रजवासियों के घर में भी गए अंदर जाकर देखने के लिए, कहीं किसी घर में तो नहीं छिपे हैं गोविंद देव, लेकिन फिर भी नहीं मिले। अंत में जब वो यमुना किनारे बैठे दुख प्रकट कर रहे थे, एक छोटा बालक वहां पर आया ब्रजवासी, बहुत सुंदर, और पूछा बाबा बाबा आप क्यों दुखी क्यों हो, आप क्यों दुखी हो। तो रूप गोस्वामी पता नहीं क्यों उनको उस बालक को देखकर इतना आकर्षण जागृत हो रहा था कि रूप गोस्वामी ने उनको अपने हृदय की बात बताई। तो बालक कहने लगा आप चिंता मत करो, यहां पर पास में एक बहुत ही पवित्र तीर्थ है गोमत टीला, और वहां पर एक छोटे से टीला, टीला यानी एक बड़ा पर्वत नहीं, छोटी सी छोटे सा ऊंचा स्थान, छोटा सा ऊंचा स्थान, वहां पर आप देखोगे रोज एक गाय आती है और वो गाय जो है अपना दूध उस स्थान पर डाल देती है, उस स्थान के नीचे ही गोविंद देव है, चलो चलो मेरे साथ मैं तुमको दिखाता हूं कहां पर है वो टीला। तो ब्रजवासी बालक रूप गोस्वामी को हाथ पकड़कर उस स्थान पर लेकर आए और अचानक स्थान को दिखाकर रूप गोस्वामी जब देखने गए तो बालक अदृश्य हो गए, चले गए। रूप गोस्वामी समझ गए कि ये बालक कौन था, कृष्ण, स्वयं कृष्ण। रूप गोस्वामी सोचने लगे कि भगवान कृष्ण स्वयं आए और मैं उनको पहचान नहीं सका, वो बेहोश हो गए। फिर उठे और फिर सब लोगों को पुकारा, आओ यहीं पर आओ सब लोग आओ, और गांव के सब लोगों को लेकर उस स्थान पर खुदाई करना शुरू किया। हजारों हजारों ब्रजवासी एकत्रित हुए और एक आवाज सुनाई पड़ी आकाशवाणी, आकाशवाणी से आवाज सुनाई पड़ी कि हाँ यहीं पर गोविंद देव है, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप गोविंद देव को प्राप्त करो, उनकी सेवा करो। ये शब्द किसके थे? श्री बलराम जी के। बलराम जी ने आशीर्वाद दिए। इसमें एक महत्वपूर्ण तत्व है कि बिना बलराम की कृपा के कृष्ण नहीं मिलते। यानी बलराम जी कौन है? आदि गुरु। तो गुरु की कृपा से ही कृष्ण मिलते हैं। तो यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, गुरु को प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो बलराम जी जो गुरु के रूप में अपनी कृपा हमें प्रदान करते हैं। श्री गौर गोविंद महाराज बहुत सुंदर पॉइंट बताते हैं कि जैसे हमारा हृदय जो है एक स्थान है जहां पर फसल, कृष्ण प्रेम की फसल उगनी है, लेकिन फसल उगने से पहले जो खेत है उसको उपजाऊ बनाना पड़ता है, उसको हल से, मराठी में क्या बोलते हैं, हल नांगर से उसको अच्छा बनाना पड़ता है। ऐसे गुरु की आज्ञाएं जो हैं वो हमारे हृदय को ऐसे अनुकूल बनाते हैं जिससे कृष्ण प्रकट हो सके। तो ब्रजवासी ने जब खुदाई की तो अंदर से गोविंद देव के सुंदर विग्रह को प्राप्त किया। उनका रूप हजारों हजारों कामदेव से भी ज्यादा आकर्षक था, और जब सब वैष्णवों ने उनके रूप को देखा उनके आंखों में आंसू आने लगा और सब लोग जोर से पुकारने लगे, श्री राधा गोविंद देव की, श्री गोविंद देव की। और पूरे ब्रज भूमि में एक बड़ा उत्सव मनाया गया गोविंद देव के फिर से प्रकट होने का। 4000 वर्ष तक भगवान गोविंद देव अप्रकट थे और अब वो प्रकट हुए रूप गोस्वामी के प्रयासों से। हजारों हजारों लोग आए, इवन ब्रह्मा शिव जी भी आए वेश बदल के, जिससे कि वो गोविंद देव का दर्शन कर सके। इंटरेस्टिंग, ऐसे उस दिन गौरंग प्रभु बहुत सुंदर बता रहे थे जन्म स्थान पर कि यहाँ भारत में है तो बड़ा आसान है यात्रा में आना, अगर आप अमेरिका से हो गए तो आपको पहले एक प्लेन टिकट लेना होगा, पता नहीं कितने, 30-40 हजार रुपए का यहाँ आने के लिए। और उससे ज्यादा अगर आप देवलोक में हो गए तो पहले इंटरप्लैनेट आना होगा। अगर आप में से कोई गलती से अगले जन्म में गंधर्व लोक चला जाता है तो आप वृंदावन नहीं आ सकते इतनी आसानी से। भारत से वृंदावन काफी पास है देवलोक, किन्नर लोक, ब्रह्मलोक की तुलना में। इसलिए भारत भूमि इतनी धन्य है कि देवता भी सोचते हैं कि अगर हमें भारत भूमि में जन्म मिले बहुत धन्य होगा, जिसे हम इस संकीर्तन आंदोलन में भाग ले सके। तो यहां पर बताया गया कि देवता ब्रह्मा जी शिव जी वेश बदल कर आए जिससे कि गोविंद देव का बहुत पास से दर्शन कर सके। श्री रूप गोस्वामी वो इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने एक पत्र लिखा, क्योंकि उस समय गौरंग महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास करते थे। उन्होंने एक संदेशवाहक के द्वारा एक पत्र भेजा कि गोविंद देव को हमने खोज निकाला है और इस तरह से हम उनकी सेवा कर रहे हैं। जब ये समाचार श्री गौरंग महाप्रभु ने सुना उनका हृदय उल्लास से बहुत प्रसन्न हो गया। उनके स्वयं के एक पार्षद थे जिनका नाम था काशीश्वर पंडित। उन्होंने काशीश्वर पंडित को अपने पास में बुलाया और कहा, आप शीघ्र वृंदावन जाओ और रूप गोस्वामी को मदद करो, राधा गोविंद देव की सेवा में उनको मदद करो। काशीश्वर पंडित और ईश्वरपुरी ये दोनों वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई थे, और ईश्वरपुरी ने अपने देह त्याग करने से पहले उन्होंने गोविंद और काशीश्वर को आज्ञा दी थी कि आप जाओ और श्री गौरंग महाप्रभु के निजी पार्षद के रूप में, उनके सेवक के रूप में उनकी सेवा करो। तो गोविंद और काशीश्वर वहां पर आए। काशीश्वर की एक सेवा थी रथ यात्रा के समय जब भगवान जगन्नाथ नृत्य करते, या जब भगवान जगन्नाथ जगन्नाथ मंदिर से गंभीरा अपने कमरे में जाते या गंभीरा से मंदिर जाते, तो काशीश्वर पंडित लोगों को भगवान के बहुत पास आने से रोकते, जैसे क्राउड कंट्रोल होता है, कंट्रोल करते, और जिससे कि जब भगवान कीर्तन कर रहे हो और जोर से गा रहे हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जब भक्त कीर्तन कर रहे हो तो कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करे चलने में। जब काशीश्वर पंडित को आज्ञा मिली कि आप वृंदावन जाओ तो रोने लगे, कैसे वो भगवान के विरह को सहन कर सकते थे, क्योंकि वो श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ सेवा कर रहे थे। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, आप चिंता मत करो, उन्होंने स्वयं अपने हाथों से अपने स्वयं का विग्रह दिया। श्री गौरंग महाप्रभु ने स्वयं गौरंग महाप्रभु का अपने स्वयं का विग्रह दिया और वो बोले कि ये विग्रह मेरे से अभिन्न है और इस विग्रह का नाम हो गया गौर गोविंद। श्री गौर गोविंद भगवान की जय। ये है कृष्ण की मूर्ति, कृष्ण मुरली बजा रहे हैं लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस विग्रह में प्रकट हुए और चैतन्य महाप्रभु उनसे कहने लगे कि जब तुम इनको भोग अर्पण करोगे इस विग्रह को या पानी अर्पण करोगे तो आप मेरे को स्वयं को देखोगे ये भोग को स्वीकार करते हुए। तो आप आज भी अगर जयपुर आप जाओगे जहां राधा गोविंद देव की मूल मूर्ति है, ये जो अधिकांश मदन मोहन गोविंद देव गोपीनाथ जो मूल मूर्ति है वो जयपुर चले गए और बाद में उनमें से कुछ करौली चले गए, लेकिन अभी वहां पर प्रतिभू मूर्ति है। जब मूल मूर्ति कहीं चले जाए तो प्रतिभू मूर्ति की आराधना की जाती है जो भी उसी के समान शक्तिमान होती है। लेकिन आप कभी जयपुर जाओगे शायद अगली यात्रा में तब आप देखोगे ये बहुत सुंदर विग्रह है राधा गोविंद देव के और उसके दूसरी ओर जो है एक छोटी सी मूर्ति है गौर गोविंद जिसकी सेवा जो है काशीश्वर पंडित करते थे। महाराज बताते हैं इट इज वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इज द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ लॉर्ड चैतन्य इन द हिस्ट्री ऑफ अवर संप्रदाय दैट केम टू द वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। ये पहले विग्रह थे चैतन्य महाप्रभु के जो कि भारत के पश्चिम दिशा में आए, राजस्थान में, बाद में पहले वृंदावन में और फिर राजस्थान। अब मदन मोहन का एक और पॉइंट यहां बताया गया। मदन मोहन की मूर्ति तो यहां पर सनातन गोस्वामी ने स्थापना की। महाराज प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु के समय ओडिशा के राजा थे और उनको जब पता चला कि मदन मोहन और गोविंद देव की पूजा शुरू हो रही है तो उन्होंने दो राधा रानी की ड्यूटीज बनाई। मदन मोहन अकेले थे और गोविंद देव भी अकेले थे तो उन्होंने एक राधा रानी की मूर्ति भेजी, एक मदन मोहन के लिए और एक गोविंद देव के लिए। रात के समय जब विग्रह को ले जाने वाले थे पुजारी को स्वप्न आया, श्रीमती राधा रानी स्वयं प्रकट हुई, राधे राधे, राधे, राधे। सब लोग जोर से बोलिए राधे राधे, राधे, राधे। और स्वयं राधा रानी कहने लगी कि ये दो मूर्ति है इनमें एक तो मैं हूं और दूसरी मूर्ति जो है वो मेरी नहीं है, वो ललिता सखी है, तो दोनों मूर्तियां मदन मोहन को ही अर्पण करो, गोविंद देव के लिए नहीं है। तो पुरुषोत्तम जाना ने सुना तो बहुत खुश हो गए लेकिन साथ में दुखी भी हुए। ये सोचने लगे कि मदन मोहन के लिए राधा रानी है, गोविंद देव के लिए क्या होगा, अभी मैं गोविंद देव की सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो बहुत सोच रहे थे, बहुत जगह ढूंढ रहे थे राधा रानी के लिए योग्य मूर्ति, राधा रानी की योग्य मूर्ति जो कि गोविंद देव के साथ साइड में उनको इंस्टॉल उनका स्थापना की जा सके। निराश होकर जब वो रात में विश्राम करने लगे उनको एक और सपना आया और सपनों में श्रीमती राधा रानी आई और बताने लगे कि ये जो जगन्नाथ मंदिर में जो लक्ष्मी मूर्ति आप जो बोल रहे हैं वो वास्तव में मैं हूं, मैं राधा रानी हूं। लोग सोच रहे हैं कि मैं लक्ष्मी हूं लेकिन मैं स्वयं राधा रानी हूं, इसलिए आप ऐसा करो कि आप जो जगन्नाथ मंदिर में जो लक्ष्मी की मूर्ति है उसको तुरंत गोविंद देव के पास भेज दो और वो गोविंद देव के साथ पूजनीय है। ये कैसे हुआ इसके पीछे भी और एक कहानी है, कैसे लक्ष्मी राधा रानी कैसे राधा रानी को लक्ष्मी कैसे मानने लगे। बहुत समय से पहले की बात है, वृंदावन में एक बार राधा रानी की एक विग्रह को उड़ीसा भेजा गया, उसमें उड़ीसा को उत्कल देश कहते थे। वहां पर एक भक्त थे इनका नाम था बृहद भानु। बृहद भानु बड़े भक्ति के साथ बड़े ध्यान के साथ राधा रानी की सेवा करते, अंत में वो वृद्ध हो गए और उन्हें देह त्याग करके वो गोलोक वृंदावन चले गए। तब राधा रानी की मूर्ति यहीं पर थी, कोई ख्याल रखने वाला नहीं था। तब पुरी के राजा जब वहां पर आए तो उनको समाचार मिला कि एक विशेष विग्रह श्रीमती राधिका का और कोई इसका ख्याल नहीं रख रहा। तब उन्होंने निश्चय किया कि मैं इसको जगन्नाथ पुरी ले जाऊंगा और भगवान जगन्नाथ के साइड में उनकी सेवा की जाएगी। लेकिन जब वो सेवा करने लगे एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आई और धीरे धीरे लोग सोचने लगे कि ये लक्ष्मी देवी है और लक्ष्मी के रूप में उसकी पूजा करने लगे। लेकिन कई वर्षों के बाद जब महाराज प्रताप रुद्र के पुत्र पुरुषोत्तम देव के स्वप्न में भगवान प्रकट हुए, राधा रानी प्रकट हुए और कहने लगे कि लोग जिसको लक्ष्मी मान रहे हैं वो लक्ष्मी नहीं है, वो मैं राधा रानी हूं, तो फिर सब वैष्णवों की आज्ञा से उस लक्ष्मी की मूर्ति को जगन्नाथ मंदिर से लेकर उसको वृंदावन भेजा गया। लेकिन कुछ साल बाद ये बहुत धूमधाम से स्थापना हुई, मंदिर का भी निर्माण किया। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के एक शिष्य थे राजा मान सिंह जयपुर के, वो राजा अकबर के सेना में एक बड़े जनरल थे, बड़े सेनापति थे वो, लेकिन महान वैष्णव थे और उन्होंने राधा गोविंद देव का मंदिर निर्माण किया। आज शाम के समय शायद हम लोग वहां जा पाएंगे या जब भी आपको समय मिले तो आप ये मंदिर को देखोगे तो ये अतुलनीय है। आज के समाज में, आज के समय में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर भी इतना सुंदर मंदिर बनाना संभव नहीं है जो कि राधा गोविंद देव के लिए बनाया गया। लेकिन कुछ वर्षों बाद ये एक्चुअली ये 7 मंजिलों का था ऊंचा मंदिर, लेकिन कुछ वर्षों के बाद ये जो बड़ा बदमाश औरंगजेब, सब बहुत लाइट वर्ड है इसके लिए, वो जब उसको पता चला, वो आगरा से देख रहा था, उसने अपने स्वयं के पिता को बंदी बना दिया, आप जानते हैं, अपने भाइयों की हत्या कर दी। तो जब उसने देखा कि यहाँ कोई दिखाई पड़ रहा है, अरे तो ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर दिख रहा है कोई चीज, जो असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है जो भी कोई चीज सुंदर दिखता है वो अपने लिए चाहता है। तो औरंगजेब ने अपनी सेनाओं को भेजा कि तुम जाओ ये हिंदू मंदिर जो है इसको नष्ट कर दो। तो उन्होंने कई सैनिकों को भेजा, लेकिन इससे पहले कि सैनिक पहुंचे वैष्णव को समाचार मिल गया कि इस तरह से मंदिर पर आक्रमण होने वाला है। तो उन्होंने जो विग्रह थे, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव, राधा गोपीनाथ, राधा विनोद, ये सब विग्रहों को वृंदावन से बाहर ले गए और पहले उनको राधा कुंड के पास ले गए, फिर काम्य वन, और फिर वहां से सब जयपुर चले गए, और बाद में जयपुर से मदन मोहन करौली चले गए। ये कहानी बहुत लंबी है, फिर कभी मैं बताऊंगा। सिर्फ एक विग्रह यहीं पर रहे और वो है राधा रमन, क्योंकि राधा रमन बहुत छोटे हैं कद में, उनको पुजारियों ने एक बॉक्स डिब्बे में ही छुपा के रखा था और किसी को उसकी जानकारी नहीं थी कि राधा रमन के मूल विग्रह अभी भी वृंदावन में है। उसके अलावा अधिकांश विग्रह जो है वो जयपुर या करौली में है। तो औरंगजेब के सैनिकों ने जब देखा विग्रह तो चले गए थे, तब उन्होंने मंदिर को नाश करना शुरू किया, और इसलिए अब आप देखोगे सिर्फ 2 या 3 मंजिल है, परंतु आप कल्पना कर सकते हो कि उस समय कैसी ज्यादा सुंदरता रही होगी। हरे कृष्ण। हम लोग कुछ देर के लिए कीर्तन करेंगे और फिर बाकी की कथा चालू रखेंगे। सुदर्शन प्रभु काम्य वन में है, ऐसे बताया जाता है कि वज्रनाभ ने 4 देव और 4 देवियां और 5 महादेव ऐसे स्थापना किए थे। तो 4 देव हैं हरिदेव, केशव देव, बलदेव और गोविंद देव, ये 4 देव, और साथ साथ वृंद देवी, पतलेश्वरी और कौन से, वृंद देवी, पतलेश्वरी और 2 देवियां, 4 देवियां भी स्थापना की हैं। तो मैं वृंद देवी के बारे में विशेष रूप बताना चाहता हूं क्योंकि ये वृंदावन जो स्थान है वृंद देवी से आता है। रूप गोस्वामी जब यहां वृंदावन में रहते थे, उनको एक बार एक स्वप्न आया और उस स्वप्न में वृंद देवी स्वयं आई और कहने लगी कि मेरी मूल मूर्ति जो वज्रनाभ ने स्थापना की थी 5000 वर्ष पहले, वो मूल मूर्ति जो है ब्रह्मकुंड के पास में है, जमीन के अंदर, आप निकालो मुझे। रूप गोस्वामी वहां पर गए, उन्होंने खुदाई की और उस विग्रह को निकालकर उसकी आराधना करना आरंभ किया। जब औरंगजेब अपनी सेनाओं के साथ यहां पर आक्रमण करने आया तो ये सब विग्रह, मदन मोहन, गोविंद देव, गोपीनाथ, वृंद देवी, सबको पुजारियों ने बड़े ध्यान से बचाते हुए यहां से बाहर निकाला। यहां से सारे विग्रह को राधा कुंड के पास ले गए और कुछ समय राधा कुंड के पास रहे और वहां से फिर वो राजस्थान की ओर निकले। राजस्थान में ही ब्रज का एक स्थान है जिसको काम्य वन बोलते हैं। तो काम्य वन में वो रात के समय विश्राम कर रहे थे, सारे वैष्णव मदन मोहन गोविंद देव गोपीनाथ वृंदा देवी सब। और सवेरे जब वो चलने लगे, सब विग्रह को बैलगाड़ी में रखा हुआ था, तो मदन मोहन के विग्रह चल पड़े, गोपीनाथ चल पड़े, गोविंद देव चल पड़े, लेकिन वृंदा देवी नहीं चले। और भक्त बहुत प्रयास कर रहे थे, वो बैलगाड़ी आगे ही नहीं चल रही थी। तो भक्त बहुत निराश हो गए और उस समय वृंदा देवी ने पुजारियों को बताया स्वप्न में कि ये सब जो भगवान के रूप है मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ वो कहीं भी जा सकते हैं क्योंकि भगवान है, लेकिन मैं वृंदा देवी हूं, मैं वृंदावन या ब्रज को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। और तब से वृंदा देवी वही काम्य वन में ही है, आज भी काम्य वन में आप उनके सुंदर रूप का दर्शन कर सकते हैं। मैं राधा गोपीनाथ के बारे में बताना चाहूंगा जो हम सबके प्राण धन है। गोपीनाथ की जो विग्रह है वो भी 5000 वर्ष पूर्व मूलतः वज्रनाभ द्वारा स्थापित है, जो कि महान कृष्ण के पुत्र के पुत्र के पुत्र हैं। कुछ वर्षों के लिए गोपीनाथ के विग्रह अप्रकट हो गए और एक महान भक्त है जिनका नाम था परमानंद भट्टाचार्य, उनको भगवान गोपीनाथ ने सपने में बताया कि मैं बंसीवट पेड़ के पास में हूं। आपने बंसीवट देखा है? बंसीवट नहीं देखा, पता नहीं हमारे पास समय होगा कि नहीं। ये बहुत सुंदर स्थान है जहां पर श्रीमन रास रसारम्भी वंशीवट तरस्थित कृष्ण वेणु स्वनेर गोपी गोपीनाथ था। भगवान ने अपनी मूलत अपनी मुरली बजाकर गोपियों के मन को आकर्षित किया था, वो स्थान को बंसीवट बोलते हैं। वृक्ष है, इसके नीचे सारे गोपियां दौड़ते हुए आए थे तो श्याम सुंदर कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात्रि के समय रास लीला करने का निश्चय किया था। तो यहीं पर भगवान गोपीनाथ जी निवास स्थान कर रहे थे। तो परमानंद भट्टाचार्य वो खोजने के लिए निकल पड़े। उस समय यमुना में बाढ़ थी और जो मूल जो वंशीवट का वृक्ष था वो बाढ़ के कारण जड़ से बाहर आ गया था। तो परमानंद भट्टाचार्य ने उस मूल वृक्ष की एक डाली को लिया और उसको जमीन में डाला, जिससे दूसरा पेड़ प्रकट होने लगा और वहीं पर उनको राधा गोपीनाथ के विग्रह प्राप्त हुए। परमानंद भट्टाचार्य के एक बहुत प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था मधु पंडित, और परमानंद भट्टाचार्य ने ये विग्रह की सेवा अपने प्रिय शिष्य मधु पंडित को सौंप दी। मधु पंडित गोस्वामी ने इस सुंदर मंदिर का निर्माण किया जो कि आज आप देखते हैं, जिसको राधा गोपीनाथ मंदिर कहते हैं। जो मूल मूर्ति है राधा गोपीनाथ की वो भी जयपुर में है, लेकिन यहाँ पर प्रतिभू मूर्ति है जो मूल मूर्ति से अभिन्न है। जब जानवा देवी नित्यानंद प्रभु की पत्नी जानवा देवी वो ब्रजमंडल आए बहुत सारे वैष्णव के साथ में, उन्होंने गोपीनाथ के दर्शन किए। और आप यहां पर देखोगे कि ये गोपीनाथ के मंदिर में जो राधा रानी के स्थान पे जो है जानवा देवी है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है कि कैसे जानवा देवी यहां पर प्रकट हुए, मैं फिर कभी आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि जानवा देवी जो है वो श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन अनंग मंजरी है, और इस तरह अनंग मंजरी के रूप में राधा कृष्ण की लीला में सहायता करते हैं। और एक बहुत सुंदर विग्रह है श्री राधा रमन देव, हम सबके लिए आराध्य देव। दक्षिण भारत में जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भाई विश्वरूप के खोज में निकले, वे अनेक स्थानों में भ्रमण कर रहे थे, जैसे कि कुरुम क्षेत्र, सिंहाचलम, मंगलगिरी, तिरुपति, उडुपी, रामेश्वरम। आप में से कई लोग शायद अगले महीने यात्रा में वहां पर आएंगे। ये स्थान में भ्रमण करते करते श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम पहुंचे। श्रीरंगम वो स्थान है जहां पर भगवान रंगनाथ जी का रूप बहुत सुंदर विग्रह है जो लेटे हुए हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी, इनके पिताजी का नाम था वेंकट भट्ट, और वेंकट भट्ट का घर श्रीरंग मंदिर के पास में ही था। उन्होंने श्री गौरंग महाप्रभु से निवेदन किया कि चतुर्मास्य का समय है और ये 4 महीने के लिए आप यहीं पर निवास करिए। महाप्रभु ने बड़े खुशी से स्वीकार कर लिया। रोज श्री गौरंग महाप्रभु जाते, रंगनाथ जी का दर्शन करते और उनके सामने खुशी से नृत्य करते और प्रेम से गाते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेंकट भट्ट के छोटे पुत्र गोपाल भट्ट उस समय उम्र में बहुत छोटे थे, परंतु वो श्री चैतन्य महाप्रभु से सुंदरता से और उनके गुणों से बहुत आकर्षित होने लगे। बाद में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु 4 महीने बाद श्रीरंगम छोड़कर चले गए और गोपाल भट्ट गोस्वामी विरह का अनुभव करने लगे। अनेक सारी घटनाएं हुए उनके जीवन में और अंत में वो महाप्रभु की इच्छा के अनुसार वृंदावन में आए और श्री रूप सनातन के छोटे भाई के रूप में यहीं पर निवास करने लगे। हमारी सारी कृपा के स्रोत हैं ब्रज के 6 गोस्वामी, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, इच्छाएं गोसाई कोरी चरण वंदन, जहा हुई ते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं कि इन 6 गोस्वामी को याद करते ही सारे जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाते हैं, विघ्न नाश। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी यहां पर निवास करने लगे और एक दिन वो शालग्राम शिला कुछ ले आए। नेपाल के पास एक नदी है, गंडकी नदी, वहां से वो कुछ शालग्राम शिला ले आए और वो उनकी सेवा करने लगे। शालग्राम शिला भी विग्रह है, वो साधारण शिला नहीं है, भगवान से अभिन्न है, परंतु उनका आकार भगवान के जैसा बिल्कुल नहीं था, वो एक शिला थी। तो एक दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी सोच रहे थे कि मैं भगवान की सेवा करने के योग्य नहीं हूं, तो उन शिलाओं को लेकर वापस गंडकी नदी में फेंकने गए। और जैसे उन्होंने नदी के अंदर उस शिला का विसर्जन कर दिया तो शिला उठ के फिर से उनके झोले में आ गई और फिर से शिला को डालते और फिर से ले आते, क्योंकि भगवान की इतनी तीव्र इच्छा थी और समझ गए भगवान चाहते हैं कि मैं उनकी सेवा करूं, तो शिलाओं को वापस यहां पर सेवा करने लगे। और एक दिन ब्रज में एक व्यापारी आया, अमीर व्यापारी, और वो सब भक्तों को बहुत सारे जो भी चीज उनको चाहिए सेवा के लिए दे रहा था। मदन मोहन के लिए कुछ ने आभूषण दिए, रूप गोस्वामी के प्राण धन राधा गोविंद के लिए कुछ आभूषण दिए, जीव गोस्वामी के प्राण धन राधा दामोदर के लिए कुछ आभूषण दिए। और गोपाल भट्ट गोस्वामी सोच रहे थे अगर मेरे पास भी विग्रह होते तो मैं भी कुछ उनकी सेवा कर सकता, मैं अभागा हूं। नरसिंह चतुर्दशी के दिन वैसा सोच रहे थे और रात को सोते समय उनके पास में उनकी शिलाएं थी, 12 शिलाएं थी, तो उसमें से एक उसका नाम था दामोदर शिला। तो रात के समय भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान आप तो खंभे से प्रकट हुए, नरसिंह भगवान के रूप में, आप चाहे तो इन शिलाओं से भी प्रकट हो सकते हो। ऐसा कहकर जब वो विश्राम कर रहे थे सवेरे के समय उन्होंने देखा जो छोटी शिला थी इसका नाम दामोदर था, उस शिला से भगवान का एक रूप प्रकट हुआ जिसका नाम बाद में रखा गया राधा रमन। श्री राधा रमन देव की जय। मदन मोहन के चरण कमल बिल्कुल कृष्ण जैसे थे, गोविंद देव का वक्षस्थल बिल्कुल कृष्ण जैसे, और गोपीनाथ का मुख कमल बिल्कुल कृष्ण जैसे, और राधा रमन के सारे अंग बिल्कुल कृष्ण जैसे। श्री प्रभुपाद बोलते थे कि हम राधा रमन मंदिर के पुजारियों से काफी कुछ सीख सकते हैं विग्रह की सेवा के बारे में। जब हमारे परम गुरुदेव के गुरुदेव श्री भक्तिधारायण ठाकुर ब्रजमंडल परिक्रमा ले जा रहे थे, तो क्योंकि भक्तिधारायण ठाकुर बहुत ही लायन के समान, शेर के समान, सिंह गुरु, तो कई मंदिरों में उनके स्पष्ट प्रचार के कारण कई मंदिरों ने दरवाजे बंद कर दिए, उनको आने नहीं दिया, परंतु राधा रमन के जो पुजारी थे उन्होंने उनका स्वागत किया और इसलिए हमारा विशेष आदर है उनके प्रति। एक बहुत सुंदर मजाक की भी बात है कि एक बार एक भक्त राधा रमन मंदिर में गए और देख रहे थे कितनी सुंदर पूजा हो रही है और बड़े तन्मयता से विग्रह को देख रहे थे। बाद में पुजारी जो है उनके पास आए और पूछने लगे कि आप कौन हो, तो उसने बताया कि मैं ऐसे प्रचार करता हूँ, इस्कॉन का भक्त हूँ और पाश्चात्य देश में कृष्ण भक्ति पुस्तक वितरण कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ। तो पुजारी ने कहा ठीक है, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, अगले जन्म तुम राधा रमन के सेवक बनोगे, पुजारी बनोगे। तो बड़े खुश हो गए, प्रभुपाद के पास आए बोलने की मुझे आशीर्वाद मिला। क्या आशीर्वाद मिला? कि मुझे अगला जन्म जो राधा रमन के पुजारी के रूप में मिलेगा। श्रील प्रभुपाद जी बोले आप वापस जाओ, वापस जाके उसको बोलो कि आप राधा रमन की अच्छी सेवा करो तो अगला जन्म आपको प्रचारक के रूप में इस्कॉन में मिलेगा। श्रील प्रभुपाद जी दिखाना चाहते थे कि ये कोई कम महत्वपूर्ण क्रिया नहीं है, कृष्ण नाम का प्रचार करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज भी आप जाओगे तो राधा रमन के दर्शन करोगे, और अगर आप कभी थोड़े ग्रुप में जाते हैं तो पुजारी आपको शिलाएं दिखा सकते हैं, 12 शिलाएं जिसकी सेवा स्वयं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी किया करते थे। इसका नाम राधा रमन रखा गया, इसके पीछे कारण है, जहां पर ये विग्रह प्रकट हुए उस स्थान का नाम है निधि वन, और ये वो स्थान है जहां पर राधा और कृष्ण की रास लीला होती है। और राधा रमन करते हैं कृष्ण, जो कि श्रीमती राधा रानी में रमन करने वाले हैं। एक दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी राधा रमन की सेवा कर रहे थे, और एक दिन वो सोच रहे थे कि मैं कितना अभागा हूं, मैंने गौरंगा महाप्रभु के दर्शन किए और मैं उनकी आज्ञा से सेवा कर रहा हूं, परंतु मैं उनकी सेवा नहीं कर पा रहा, मैं राधा रमन की सेवा कर रहा हूं लेकिन गौर सुंदर की सेवा नहीं कर रहा, कैसे मैं गौरंगा महाप्रभु की सेवा से वंचित रह गया हूं। जब वैसे सोच रहे थे राधा रमन के पास में पहुंचे, अचानक देखा राधा रमन की डीटीज जो है उनके विग्रह बदल के गौरंग महाप्रभु बन गए, गौरंगा। अब इतना धीरे बोल रहे हैं, क्या ब्रेकफास्ट था कि नहीं? सब लोग जरा जोर से बोलिए, गौरंगा गौरंगा गौरंगा। उन्होंने देखा राधा रमन गौरंग के रूप में आ गए, और उन्होंने और क्या देखा कि गौरंग महाप्रभु उनको कृपा प्रदान कर रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि मेरे में और राधा रमन में कोई भी अंतर नहीं है। इस तरह से गोपाल भट्ट गोस्वामी जीवन भर यहीं पे रहे, उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और कई पुस्तकों के संशोधन में मदद भी की है। लेकिन गोपाल भट्ट थे ना जिन्होंने बोला मेरा नाम मत देना चैतन्य चरित्र, हरिभक्ति विलास, उन्होंने बोला मेरा नाम चैतन्य चरितमृत मत लिखना। आप सोचोगे उन्होंने हरिभक्ति विलास पुस्तक लिखने में मदद की, इतने महान आचार्य उनका वर्णन क्यों नहीं आता चैतन्य चरितामृत में ज्यादा? क्योंकि जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत लिख रहे थे तो सबसे आशीर्वाद मांगने गए वैष्णवों से, जब गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास गए तब उन्होंने बोला ठीक है मैं आशीर्वाद देता हूं, एक ही शर्त है मेरे बारे में कुछ भी मत लिखना। आजकल अगर आपको किसी एकेडमिक सर्कल में यूनिवर्सिटी में कुछ थीसिस लिखना हो तो आशीर्वाद चाहिए हो तो बोलेंगे मेरा नाम पहले लिखना, बीच में और अंत में। यानी कि लोग प्रसिद्धि के विरुद्ध, प्रसिद्धि के पागल है प्रसिद्धि के लिए, लेकिन वैष्णव सोचते हैं कि प्रसिद्धि ये शुक्र एरा विष्टा है, ये वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि प्रसिद्धि सब गुरु और कृष्ण को मिले। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का ज्यादा वर्णन आप चैतन्य चरितामृत में नहीं पाओगे, लेकिन भक्ति रत्नाकर में बहुत वर्णन आता है उनका। गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि का दर्शन भी आज ही आप करोगे अगर कृष्ण चाहेंगे तो, और राधा रमन के मंदिर में ही है। इसके बाद हम लोग जाएंगे एक और मंदिर, इसका नाम है राधा गोकुलानंद मंदिर। श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्री राधा गोकुलानंद इन बेलगाम की जय। एक बार राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे जब बेलगाम के भक्तों को बहुत विरह हो रहा था, देवामृत प्रभु वृंदावन आ गए, तो महाराज बोल रहे थे कि देवामृत प्रभु ने गोकुलानंद को इतना आनंद दिया कि उन्होंने उनको गोकुल में बुला लिया। तो ये जो गोकुलानंद मंदिर है यहाँ पर आप देखोगे हमारी एक महान आचार्य श्री लोकनाथ गोस्वामी के विग्रह है। मैं लोकनाथ गोस्वामी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा क्योंकि वहां पर बताना संभव नहीं होगा। लोकनाथ गोस्वामी ये भक्ति के इस भाग के एक प्रमुख उदाहरण है, सर्विस इन सेपरेशन, विरह में सेवा करना। भक्ति एक बहुत गुह्य चीज है, इस दुनिया में मिलन को सबसे ऊंचा माना जाता है, लेकिन भक्ति में जो विरह की भक्ति है सबसे ऊंची मानी जाती है। यही एक मुख्य कारण है कि कृष्ण व्रत छोड़कर गए, या वास्तव में छोड़कर नहीं गए लेकिन ऐसा आभास हुआ जिससे कि गोपियों का जो विरह प्रेम का अनुभव कर सके। तो लोकनाथ गोस्वामी रूप और सनातन से भी पहले काफी सीनियर थे, उम्र में भी और भक्ति में भी। वास्तव में लोकनाथ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को नवद्वीप लीला से ही जानते थे, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने लोकनाथ गोस्वामी से कहा कि बहुत जल्दी मैं संन्यास लेने वाला हूं और आपके लिए यह संभव नहीं होगा कि इस दुख को सहन करना, इसीलिए आप वृंदावन चले जाओ और वहां पर आपको मैं आप संग दूंगा। तो लोकनाथ गोस्वामी, उनके आंखों में आंसू आने लगे कि उनके प्राणनाथ गौरंग महाप्रभु उनको विदा कर रहे हैं, परंतु फिर भी वो आज्ञा पालन करते हुए गए। उनके साथ भुगुर्भ गोस्वामी भी गए। लोकनाथ गोस्वामी, भुगुर्भ गोस्वामी, ये दो पहले गोस्वामी थे। इनफैक्ट भुगुर्भ गोस्वामी की समाधि आप दामोदर मंदिर में पाओगे। तो जब वे यहां पर आए वृंदावन में, एक स्थान है जिसका नाम है किशोरी कुंड, तो वहां पर भ्रमण कर रहे थे और अचानक ये खदीर वन के पास स्थान है, उमराव नाम के गांव में, और अचानक उन्होंने देखा, उनको एक आवाज सुनाई पड़ी, मैं बहुत भूखा हूं, मुझे भूख लगी है। शायद आप भी बोल रहे होंगे लेकिन ये डीटीस बोल रहे थे। देखा उन्होंने, छोटे से डीटीस, और वो विग्रह बोल रहे थे, मेरा नाम है राधा विनोद, आप मेरे को यहां से मेरे को अपने साथ ले जाओ। तो लोकनाथ गोस्वामी राधा विनोद को अपने साथ में ले गए। उनके पास एक झोला था जैसे शोल्डर बैग होता है, और वो डीटीस अपने साथ ले जाते और उनको जो भी पतियों का बिस्तर बनाते और जो भी उनको कुछ फल मिलते भगवान को भोग लगाते। भगवान प्रेम के भूखे हैं, तो लोकनाथ गोस्वामी उनकी सेवा करते राधा विनोद के। बाद में लोकनाथ गोस्वामी को समाचार मिला कि श्री गौरंग महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, संन्यास लेकर वो दक्षिण भारत की ओर चले गए हैं, वृंदावन नहीं आ रहे। लोकनाथ गोस्वामी भगवान से मिलने के लिए इतने आतुर थे कि वो वृंदावन से सीधे दक्षिण भारत गए, और जब वो दक्षिण भारत में पहुंचे तो पता चला श्री चैतन्य महाप्रभु भी यहां थे और अब से वो वापस चले गए नवद्वीप, सॉरी जगन्नाथपुरी। तो जब लोकनाथ गोस्वामी जगन्नाथपुरी पहुंचे ढूंढते ढूंढते, तब उनको समाचार मिला कि अभी अभी यहां पर भगवान थे जगन्नाथपुरी, लेकिन अब वो वृंदावन चले गए। और आप ये डिस्टेंस, उस समय ट्रेन्स नहीं थे कि आप रिजर्वेशन करा के स्लीपर क्लास सो के जा सके, पैदल जाना होता था। आप सोचिए वृंदावन से लेकर दक्षिण भारत तक, और दक्षिण भारत पहुंचे तो महाप्रभु अभी चले गए, तो जगन्नाथपुरी गए तो पता, ओ भगवान अभी यहाँ थे लेकिन अब वो वृंदावन गए, और वृंदावन पहुंचे पता चला अभी भगवान यहाँ थे लेकिन अब यहाँ से वापस जगन्नाथपुरी गए। तो लोकनाथ गोस्वामी अपने दुखी अवस्था में जब विश्राम कर रहे थे, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं स्वप्नों में आकर बोले कि आप यहीं पे रहो, मैं चाहता हूं कि आप यहीं पर मेरी सेवा करो। तो इस प्राकट्य लीला में लोकनाथ गोस्वामी को भगवान गौरंग महाप्रभु का संग फिर से नहीं मिला, परंतु वो हमेशा विरह में उनकी सेवा करते रहते थे। लोकनाथ गोस्वामी भी इतने नम्र वैष्णव थे, वो किसी को अपना शिष्य नहीं बनाना चाहते थे। कई बार लोग चाहते हैं कि जितने मेरे चेले हैं उतनी मेरी भक्ति आगे बढ़ रही है, लेकिन वास्तव में सच्चा भक्त सोचता है कि मुझे सेवा चाहिए, अगर सेवा के रूप में शिष्य स्वीकार करने पड़े तो ठीक है। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितम वा, मुझे अनुयायी भी नहीं चाहिए। लोकनाथ गोस्वामी ने किसी को अपना शिष्य नहीं स्वीकार किया, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर को स्वयं भगवान गौरंग ने कहा कि जाओ जाओ आप लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लो। लोकनाथ गोस्वामी के पास गए लेकिन लोकनाथ गोस्वामी बोले नहीं मुझे नहीं, लेकिन अंत में नरोत्तम दास ठाकुर छिप छिप कर सेवा करने लगे। शौच क्रिया पर जहां पर लोकनाथ गोस्वामी जाते उनको उस स्थान को साफ करते, और एक दिन जब लोकनाथ गोस्वामी ने देखा तो बोले अरे आप राजकुमार हो, आप राजकुमार होकर ऐसे ये भंगी का कार्य कर रहे, आपको शोभा नहीं देता। और नरोत्तम दास ठाकुर आंखों में आंसू भरकर कहने लगे कि मैं आपका सेवक हूं किसी भी रूप में। और तब लोकनाथ गोस्वामी ने उनको शिष्य के रूप में स्वीकार किया, और बस एक ही शिष्य, उसके बाद और कोई शिष्य नहीं स्वीकार। तो लोकनाथ गोस्वामी के समाधि आप दर्शन करोगे आज, मूल समाधि, और उनके प्रिय शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर के भी पुष्प समाधि, श्री विश्वनाथ ठाकुर की समाधि, गंगा नारायण चक्रवर्ती ठाकुर की समाधि, सब समाधि एक ही छोटे से कंपाउंड में है। और वहीं पर राधा गोकुलानंद का मंदिर भी है। ये गोकुलानंद की जो विग्रह है जो आप देखोगे छोटे से, इसकी पूजा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर करते थे। और उसी मंदिर में लोकनाथ गोस्वामी के प्राण धन राधा विनोद निवास करते हैं। मूल मूर्ति अभी जयपुर में है और प्रतिभु मूर्ति है, और साथ साथ राधा विजय गोविंद वो विग्रह जिन्होंने बलदेव विद्याभूषण को क्या था, कौन सा कमेंट्री था, गोविंद भाष्य सुनाया, जिसको उन्होंने लिखित रूप में पेश किया, वो विग्रह भी है। और एक विशेष मूर्ति है श्री गौरंग महाप्रभु की, जिसकी पूजा नरोत्तम दास ठाकुर करते थे, इसका भी दर्शन आप वहां पर करोगे। वहां पर समय नहीं होगा सब बताने के लिए, आप सिर्फ दर्शन करते हुए निकलेंगे। तो यह है राधा विजय गोविंद, एक ही ऑल्टर पर आप देखोगे, राइट साइड में राधा विजय गोविंद, उससे छोटे राधा विनोद, इस तरफ नरोत्तम और सामने गोकुलानंद। और एक छोटी सी शिला आप देखोगे, वो शिला जो कल मैं बता रहा था गोवर्धन परिक्रमा के दौरान, कि ये शिला जिसको श्री गौरंग महाप्रभु अपने छाती से लगाते, कई बार आंसुओं से भिगोए होते, कई बार उसको उनके उंगली के स्पर्श से वो शिला भी पिघल गई थी, उनके उंगली के निशान आज भी हैं। और ये शिला जो उनके लिए प्राण धन थी, उन्होंने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को सौंप दी थी, और रघुनाथ दास गोस्वामी की वो शिला आज भी आप राधा गोकुलानंद मंदिर में दर्शन करोगे। श्री राधा गोकुलानंद की जय। थोड़ा सा बलदेव विद्याभूषण के बारे में बताया गया कि वो एक महान भक्त थे मध्व संप्रदाय में, पहले गौड़िया नहीं थे बारह दृष्टि से, परंतु जगन्नाथपुरी में उनको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का संग मिला, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उनको समझाया कि कैसे ब्रज भूमि की जो भक्ति है वो सर्वोच्च है, ब्रज भक्ति के जो सुप्रीम कंक्लूजन है, सबसे ऊंचे निष्कर्ष है, उसके बारे में सिखाया और उनको ये ऊंचे विषय बताए। और बाद में बलदेव विद्याभूषण जो है विश्वनाथ ठाकुर के शिक्षा शिष्य जैसे बन गए। और कौन सा विग्रह रह गया, राधा दामोदर की जो विग्रह हैं, जीव गोस्वामी को, सॉरी रूप गोस्वामी ने स्वयं निर्माण किए थे और जीव गोस्वामी को सौंपे थे। हरे कृष्ण। स्वामी रूप और सनातन के छोटे भाई थे अनुपम, और अनुपम के पुत्र थे श्री जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी ने पहला दर्शन श्री गौरंग महाप्रभु का उस समय किया था जब श्री चैतन्य महाप्रभु रामकेली ग्राम में आए थे। उस समय जीव गोस्वामी की उम्र सिर्फ 4 वर्ष थी, परंतु स्वाभाविक रूप से वो श्री गौरंग के चरणों के प्रति आसक्त हुए थे। कुछ वर्षों बाद जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के पास गए। पहले वो सनातन गोस्वामी के पास गए दीक्षा मांगने के लिए, परंतु सनातन गोस्वामी ने नम्रता पूर्वक मना कर दिया और उनको कहा कि आप रूप गोस्वामी के पास जाओ। जब वो रूप गोस्वामी के पास गए तो रूप गोस्वामी ने पहले परीक्षा के रूप में उनको अनेक सेवाएं दिए, अनेक सेवाएं, जैसे कि पत्र जिस पर रूप गोस्वामी लिखते उनको तैयार करना, विग्रह की सेवा करना और सब प्रकार की तुच्छ सेवा करना। जीव गोस्वामी नम्र सेवक के रूप में सारी सेवाओं को कर रहे थे, और बाद में रूप गोस्वामी ने उनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। अपने ही हाथों से श्री रूप गोस्वामी ने जो विग्रह बनाया था उनका नाम है राधा दामोदर, और वो जीव गोस्वामी की सेवा भावना से इतने प्रसन्न थे कि वही विग्रह जिन्होंने स्वयं अपने हाथों से बनाए थे, उसकी सेवा की थी, वो विग्रह उन्होंने जीव गोस्वामी को सौंप दिए। ये विग्रह के बारे में बताया गया राधा दामोदर, कई बार ये विग्रह जीव गोस्वामी से बातचीत करते और बोलते कि मुझे ये भोग चाहिए, मुझे सेवा करो, इस प्रकार से कई बार रूप गोस्वामी देखते तो ये डीटीज उनको नृत्य करते हुए दिखाई पड़ते राधा दामोदर के। राधा दामोदर मंदिर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर हमारे फाउंडर आचार्य इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति विदान स्वामी प्रभुपाद अमेरिका जाने से पहले उन्होंने ब्रज में सारे स्थानों की अपेक्षा यहां रहना पसंद किया। यहां पर रहकर उन्होंने सारे पूर्वज आचार्यों की लिखी हुई टीका का सार के रूप में श्रीमद भागवत के ऊपर टीका लिखी। उन्होंने पूर्वज आचार्यों के जो संदेश है उसको इस तरीके से पेश किया जिसे साधारण व्यक्ति भी समझ सके। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे राधा दामोदर मंदिर के बारे में दिस इज द हब ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये आध्यात्मिक धाम का मूल स्थान है। यहां पर रूप गोस्वामी की समाधि है, हम सब रूपानुग हैं, रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं, रूप गोस्वामी की भजन कुटीर समाधि वहां है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की समाधि वहां है, जीव गोस्वामी की समाधि वहां है, और न केवल राधा दामोदर विग्रह है बल्कि आप देखोगे राधा माधव जो कि जयदेव गोस्वामी के विग्रह हैं वो भी वहां पर हैं, राधा वृंदावन चंद्र जो कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा सेवित विग्रह हैं वो भी वहां पर हैं, और राधा शैल चिकन जो भूगुर्व गोस्वामी के द्वारा चिकन मेरा बहुत सुंदर ग्लॉसी भूगुर्व गोस्वामी उनके विग्रह भी वहां पर हैं। और एक विशेष शिला है आपको याद होगा कल हम गोवर्धन परिक्रमा किए, अभी कल परिक्रमा करने के बाद अगर आज हम फिर से जाएं तो कितने लोग जाना चाहेंगे गोवर्धन परिक्रमा, हाथ ऊपर करिए। श्यामानंद प्रभु बोल रहे हैं मुझे विश्वास नहीं है। और मान लो आज आपने कर ली तो फिर कल कौन करना चाहेगा, ऐसे मानसिक कर रहे होंगे शायद। यहाँ आपको सीक्रेट मालूम होगा जो मैं बताने वाला हूँ कि कैसे करने से हो जाता है, प्रभु जी बोल रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी वृद्ध अवस्था में भी करते थे, और वो ये 20 किलोमीटर वाली नहीं, 21 किलोमीटर नहीं, वो करते थे 28 किलोमीटर वाली एक बड़ी परिक्रमा है। हम तो कलयुग के जीव और बहुत स्पेशल मर्सी, तो एक बड़ी परिक्रमा है उसमें चंद्र सरोवर और पैथा वो सब भी आता है। तो जब सनातन गोस्वामी वृद्ध हो गए तो भगवान स्वयं प्रकट हुए, कृष्ण एक गोवर्धन शिला के ऊपर और अपनी बांसुरी बजा रहे थे और शिला पिघल गई, और शिला पिघल, इनफैक्ट ब्रज में बहुत सारे स्थान है जहां पर आपको कृष्ण के चरण दिखाई पड़ेंगे, काम्य वन में है, नंदग्राम में भी है ना, आपने देखा होगा नंदग्राम में, नंदग्राम में हाँ वो देखा होगा, नंदग्राम में चरण पहाड़ी देखा होगा आपने, और काम्यवन में भी बहुत सारे स्थान है चरण पहाड़ी के, चरण पहाड़ी है जहां भी भगवान के चरण कमल के निशान है। तो सनातन गोस्वामी की सुविधा के लिए भगवान ने वो शिला उनको सौंपी और कहा कि आप इस शिला की परिक्रमा चार बार करो तो आपको गोवर्धन परिक्रमा का फल मिलेगा। इसलिए आप देखोगे राधा दामोदर मंदिर में वही शिला आज भी उपस्थित है, कोई भक्त अगर डोनेशन दे तो जनरली पुजारी वो शिला को सामने दिखाते हैं दर्शन, उसमें न केवल कृष्ण के चरण कमल, एक बछड़े के चरण कमल और बांसुरी के बांसुरी और छेड़ी के निशान वहां पर है। तो ये जो शिला है आज भी यहाँ पर राधा दामोदर मंदिर में है। रूप गोस्वामी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, परसों आप लोगों ने श्यामानंद प्रभु से टेर कदम में सुना ही होगा रूप गोस्वामी के महिमा के बारे में। यहां पर मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि कैसे रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा प्रदान हुई थी। श्री चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के समय नृत्य करते हुए अनेक गीत गाते थे, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, वो ये श्लोक गाते और मुकुंद माला स्तोत्र के श्लोक गाते, और उसके अलावा ना हम विप्र न च नरपति नापि वैश्य न शूद्र, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं वैश्य नहीं हूँ, मैं शूद्र नहीं हूँ, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी कुछ भी नहीं हूँ, मैं गोपीर भर्तूर पद कमलयोर दास दासानुदास, इस तरह से बहुत श्लोक गा रहे थे। लेकिन वो एक श्लोक गा रहे थे जिसका अर्थ किसी को पता नहीं चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि प्रेमी प्रेमिका का कोई गीत है, जैसे संसारी लवर्स का जैसे गीत होता है, सब लोग किसी को समझ में नहीं आ रहा था। और उस समय रूप गोस्वामी ने और एक कविता लिखी जो कि इस गीत को समझा रहे थे इसका अर्थ क्या है, तो जो रूप गोस्वामी ने लिखे वो इस प्रकार थी कि मैं वही राधा रानी हूँ, आप वही कृष्ण हैं, लेकिन मैं आपको वापस वृंदावन बुलाना चाहती हूँ, यमुना नदी के तट पर। और इस श्लोक को लिखकर रूप गोस्वामी चले गए एक एक ताल पत्र को जो कुटिया के ऊपर रखकर, और श्री गौरंग महाप्रभु आए और उसको पढ़ने लगे। और जब वो पढ़कर इतने प्रसन्न हुए, जब रूप गोस्वामी आए खुशी से प्रसन्नता से उन्होंने रूप गोस्वामी को थप्पड़ मारा और फिर सब भक्तों को दिखाने लगे, गूढ़ मोर अर्थ के मने जानीला, रूप गोस्वामी ने कैसे मेरे मन की बात को जान लिया। स्वरूप दामोदर गोस्वामी को दिखाया इस श्लोक का अर्थ, सिर्फ स्वरूप दामोदर गोस्वामी जानते थे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी मुस्कुराकर बोले, क्योंकि आपने उनके ऊपर कृपा की इसीलिए उन्होंने ये अंदरूनी अर्थ जान लिया। महाप्रभु बोले, हाँ ये बात सही है, जब मैं पहली बार मिला रूप गोस्वामी से प्रयाग में, तब उस समय मैं इतना प्रसन्न था उनकी नम्रता से, उनके सद्गुणों से, कि मैंने उनके ऊपर पूरी कृपा प्रदान की। तो हम भगवान के संदेश को या गुरु के संदेश को उनकी कृपा से ही समझ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद के जीवन में भी ऐसी घटना हुई, जब श्रील प्रभुपाद अपने गुरुदेव श्रील भक्तिधाम ठाकुर के व्यास पूजा पर एक कविता लिखते हैं, उसमें से एक पंक्ति एब्सोल्यूट एसेंशियल दाओ हैज प्रूव्ड, इम्पर्सनल कैलामिटी दाओ हैज रिमूव्ड, कि भगवान जो एब्सोल्यूट है वो भावनाओं से भरे हुए व्यक्ति है, वो निर्विशेष नहीं है। जब ये कविता श्री भक्तिधाम ठाकुर ने पढ़ी वो इतने प्रसन्न हुए, सबको दिखाने लगे और उन्होंने आदेश दिया कि अभय जो भी लिखे उसको प्रिंट करना चाहिए, पब्लिश करना चाहिए, क्योंकि मेरे हृदय की बात को जानते हैं। हृदय की बात को वही व्यक्ति समझ सकता है जो कॉन्फिडेंशियल गुह्य व्यक्ति हो। रूप गोस्वामी को ये कृपा प्राप्त थी। रूप गोस्वामी की एक बार लिखी हुई कुछ पंक्तियों को महाप्रभु ने देखा और वो इतने खुश हुए, बोले ये साधारण हैंडराइटिंग नहीं है, ये साधारण शब्द नहीं है, ये मोतियों की लड़ी है, इट्स अ रो ऑफ पर्ल्स, बहुत सुंदर है। रूप गोस्वामी ने एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा जो कि हम सबके लिए शायद इस जन्म में नहीं लेकिन किसी और जन्म में हम उसको रियलाइजेशन के साथ गा सकते हैं, अर्थ के साथ। वो श्लोक है कि जब मैं दो अक्षर बोलता हूं कृष्णा, तो मेरी इच्छा होती है कि मेरे पास लाखों जीवा हो, अब बोलिए कृष्णा, और जब ये ध्वनि कृष्णा, जब ये ध्वनि मेरे कानों में प्रवेश करती है तो मेरी इच्छा होती है कि मेरे पास लाखों कान हो, और जब ये ध्वनि मेरे हृदय में आती है, मेरे हृदय को जीत लेती है और मैं फिर बिल्कुल स्तब्ध हो जाता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक पढ़ा तो इतने खुश हुए, सबको दिखाया, सब वैष्णव को, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, हरिदास ठाकुर नामाचार्य हैं, वो कहने लगे मैंने नाम के महिमा में इतने सारे श्लोक सुने हैं लेकिन इतना सुंदर श्लोक कभी नहीं सुना, और सबको दिखाने लगे और सारे वैष्णव प्रसन्न हुए। वैष्णव में कोई कॉम्पिटिशन नहीं था, आपस में स्पर्धा नहीं थी। और फिर रामानंद राय, सार्वम भट्टाचार्य रूप गोस्वामी की परीक्षा लेने लगे भाव के बारे में, तत्व ज्ञान के बारे में, और रूप गोस्वामी ने सब कुछ बतलाया। और फिर स्वरूप रामानंद राय, स्वरूप दामोदर गोस्वामी रूप गोस्वामी से कहने लगे कि आप अपने लिखे हुए कविताओं को सुनाओ, अपने जो ड्रामा लिखे उसके बारे में, ललित माधव, विदग्ध माधव। और फिर रूप गोस्वामी बताने लगे, मुझे सब याद नहीं है, आपका सौभाग्य है नहीं तो प्रवचन और लंबा हो जाता यू रिमेम्बर सम वर्सेस। तो उसमें से एक श्लोक है कि श्री भगवान की लीलाएं जो हैं वो अमृत के समान है, कृष्ण लीला, और उसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु का भी गुणगान था उस श्लोक में। और जब ये गुणगान चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो कहने लगे, वो उनका ही गुणगान था कि शचिनंदन गौर हरि आपके हृदय में हमेशा स्थिर रहे, वो भगवान जो कि गोल्डन अवतार में आए हैं। सब भक्त बड़े खुश हुए, सब गाने लगे हरि हरि, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु अंदर से बहुत खुश थे लेकिन ऊपर से फीका मुंह करने लगे कि आपने ये क्या कर दिया, अब इतना सुंदर अमृत प्रवाह कर रहे थे उसके बीच में तुमने एक दूध में नमक मिला दिया, ऐसे कुछ या जहर कुछ ऐसी भी डाल दी। तब यह सुनकर रामानंद राय बोले, नहीं नहीं नहीं, ये तो अमृत है और इसमें जो ये श्लोक बोला है आपके बारे में वो कपूर के समान हो गया, और भी अच्छा हो गया। और फिर वो और वर्णन करने लगे श्री चैतन्य महाप्रभु के गुणगान का और राधा कृष्ण की लीलाओं का। रूप गोस्वामी ने इतना सुंदर ग्रंथ लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत, जिसको श्रील प्रभुपाद जी ने इतना महत्वपूर्ण माना कि मूवमेंट के शुरुआत के स्टेजेस में ही उन्होंने भक्तों को आदेश दिया उपदेशामृत का कि आप इसका वितरण करो, सबको बांटो। भक्ति रसामृत सिंधु अभी इंग्लिश में, हिंदी में और मराठी में भी हो रहा है उपदेशामृत। ऑलरेडी भक्ति रसामृत सिंधु भी है मराठी। श्यामानंद प्रभु जी हमको वचन दे रहे हैं यहाँ पर वृंदावन धाम में कि बहुत जल्दी भक्ति रसामृत सिंधु भी आएगा। बोल रहे हैं अगर आप सब आशीर्वाद देंगे तो, सब लोग हम आशीर्वाद तो नहीं दे सकते लेकिन हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं जोर से बोलकर हरि हरि। प्रभु जी मुझे कल बता रहे थे कि मेरे को तीव्र इच्छा हो रही है बहुत जल्दी कोई चीज के लिए, मैं सोचा शायद कोई प्रसाद के लिए बोल रहे होंगे। तो बोले मुझे तीव्र इच्छा हो रही है कि चैतन्य चरितामृत मराठी में आना चाहिए। तो अभी चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत सिंधु तो बाद में आएगा लेकिन उपदेशामृत ऑलरेडी है, इसलिए मैं प्रभु जी से अभी निवेदन करूंगा कि थोड़े समय के लिए जो बचा है वो उपदेशामृत के बारे में कुछ बताएं। बोल दिया था लेकिन आप कुछ और बोलिए। अच्छा अभी मैं एक प्रभु जी बोल रहे हैं पहले आप एक लास्ट एक विग्रह बच गया है उसके बारे में बताइए और बाद में मैं एक घंटा बोलूंगा। मैं प्रवचन कर रहा था और सबका मुंह फीका था और श्यामानंद प्रभु के बिना बोले ही सब लोग खुश हो गए थे। अच्छा मैं श्याम सुंदर ड्यूटीज के बारे बताऊंगा, राधा श्याम सुंदर। ये विग्रह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन ये श्यामानंद गोस्वामी के प्राण धन थे जो ये तीन भक्त साथ में रहते थे, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित। ये हृदय चैतन्य के शिष्य थे और जीव गोस्वामी के अधीन रहते थे। इनफैक्ट इस बार अगर राधा दामोदर राधा श्याम सुंदर मंदिर जाओगे तो अभी एक गुफा भी है, एक गुफा है जिसके नीचे बैठकर वे सब भक्त राधा सॉरी श्यामानंद गोस्वामी अपनी साधना करते थे। कुछ भक्त बताते हैं कि उनके हृदय से ये शिला ये विग्रह प्रकट हुआ था राधा श्याम सुंदर, इसकी सेवा आज भी की जा रही है राधा श्याम सुंदर मंदिर में। प्लीज प्रभु जी, एनीवे प्रभु जी की इच्छा नहीं है अभी तो की जा, अभी तो आएंगे महाराज बोला।